द 9th of August जलंधर दोस्ती वन में होती है। युगदृष्टा जनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज साहब ने जैन स्थानक गुडमंडी जलंधर में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए फरमाया कि दोस्ती सदा वन में होती है, उसमें देने की भावना रहती है, देने की नहीं। दोस्ती सदा दिल से होती है, विचारों से नहीं। महावीर स्वामी ने भाईचारे से भी अधिक दोस्ती को महत्व दिया है। महावीर का कहना है कि संसार के सभी प्राणियों के साथ मैत्री भाव हो, दोस्ती होना अच्छी बात है, लेकिन उसमें मर्यादा भी रहना जरूरी है। अकेली दोस्त की पत्नी घर में हो तो उसके घर में पति के दोस्त को जाना नहीं चाहिए और अकेले में बात भी नहीं करना चाहिए। हमारे सामने एक आदमी कन्फेशन करने आया। उसका कहना था कि मेरे दोस्त का समाचार आया कि मैं तो बाहर हूँ, मेरी पत्नी प्रेगनेंसी में है, उनके पेट में दर्द हो गया है, तुम जाकर डॉक्टर को दिखा दो। मैं गया, दोस्त की पत्नी को डॉक्टर को दिखा कर ले आया, फिर 10 to 20 मिनट बात करने घर में बैठ गया। बस वो एकांत का समय मिला और मेरे मन में काम भूत सवार हो गया और मैंने घोर अनर्थ कर डाला। परिणाम स्वरूप मेरी दोस्त की पत्नी का गर्भपात भी हो गया। दोस्त के साथ धोखा और महापाप। इसलिए कहा जाता है दोस्ती के साथ साथ मर्यादा का पालन भी सजगता के साथ हो। भाई भाई को जितना सहयोग नहीं करता, बल्कि ज्यादातर संकट के समय भाई किनारे हो जाते हैं, जबकि दोस्त साथ निभाते हैं। ऐसी दोस्ती को बचाएं रखने के लिए मर्यादा की अनुपालना भी जरूरी है। पर स्थिति बदले तो मन स्थिति भी बदल लो, दुख सुख में बदल जाएगा, क्योंकि दुख और सुख आखिर मन के ही तो समीकरण है। पहले बंगले में रहते थे, व्यापार में लॉस होने पर अब किराए के घर में रहने लग गए, तो परेशान मत हो, वो मन को सही कर लो। क्या फर्क पड़ता है घर का मकान हो या किराए का, सोना ही तो है। इसी तरह लॉस हो भी गया तो सोचो कि खाना तो दो रोटी ही है। फिर पैसा होना या न होना कोई महत्व नहीं रखता। अमेरिका के उद्योगपति जेकब के एक बार भारी लॉस हो गया। कुछ दोस्त सहयोग करने की भावना से आए तो लगा कि वो खुलकर हंस रहा है, लॉस का चेहरे पर कोई असर नहीं। उसका कहना था कि मेरी प्रसन्नता संपत्ति पर आधारित नहीं है, संपत्ति तो आज है कल नहीं, पर मेरी खुशियां सदाबहार है। साधु को भी मर्यादा में जीना जरूरी है। भगवान ने कहा अगर गौचरी भी जाओ और न मिले तो सोचो आज नहीं कल मिलेगा, मन में संतोष धारण कर लो। वैसे कल कभी आना नहीं, अतः संतोष ही परम धन है। बल्कि यह सोचो कि आज मेरे सहज ही तपस्या हो गई। इस प्रकार आप गृहस्थों को भी सोचने का प्रसंग है। आज कमाई नहीं हुई तो दुखी मत बनो, कल हो जाएगी। संतोष धारण करो, सोचो कि ज्यादा पैसा आ भी गया तो शांति नहीं परेशानी बढ़ेगी, यह सोचकर सुखी बन जाइए। साधुओं के लिए इसीलिए कहा गया है कि साधु किसी के घर गौचरी जाए और वहां अकेली महिला हो और साधु भी अकेला हो तो गौचरी न लेवे। या तो दो महिला हो या एक पुरुष एक महिला हो या साधु दो हो, जो भी हो अकेली महिला से आहार नहीं लेना। 100 महिला हो और एक पुरुष न हो तो साधु को केवल स्त्री परिषद में प्रवचन भी नहीं देना। यह सब मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान है। मुकेरिया से आगे किसी अजैन गांव में अकेला साधु किसी अजैन के घर में ठहरा था, तो वहां मध्याह्न में अकेली बहन के साथ अनुचित व्यवहार हो जाने से उस साधु को बहुत मारा पीटा और पुलिस को दे दिया। तब से उस गांव में जैन साधु का जाना ही बंद हो गया। अतः नियमों के प्रति सावधानी जरूरी है। साधु को गांवों में रात्रि में प्रवचन देना पड़े तो स्थानक के बाहर गली में या चौराहे पर पेड़ के नीचे या किसी बरामदे के नीचे एक या दो रात्रि तक भाई बहनों को प्रवचन दे सकता है, यह समाचारी है। घर व्यापार की या इधर उधर की बातें करना वैसे ही साधु को निषिद्ध है। फिर रात्रि में महिलाओं के साथ व्यर्थ की बातें करनी ही नहीं चाहिए। यही स्थिति साध्वियों को पुरुषों के साथ मर्यादा निभानी होती है। इन सब बातों का ज्ञान जिन वाणी सुनने से ही हो सकता है। अतः प्रवचन सुनते रहिए, जीवन बदल जाएगा। शास्त्र में कथन आया है, सोचा न्यायम मग्गन बहवो परिभस। न्याय युक्त मार्ग को सुनकर भी कई लोग पतित हो जाते हैं। यह समझने का विषय है, जयसिंह 10 साल का हुआ तब से उसकी चोरी की आदत अड़ गई। शुरू शुरू में वो पेंसिल, रबर, छोटी मोटी खाने की चीजें चुराकर लाता था। शादी के बाद उसकी पत्नी तेजाबाई को यह बात पता चली तो उसे यह आदत बहुत खटकी। उसने जय सिंह को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, हमें भगवान की दया से मजे से दाल रोटी खाने को मिल रही है, फिर चोरी जैसा जघन्य पाप करने की क्या जरूरत है। कभी किसी की बददुआ लग गई तो अपना बिगाड़ होते देर नहीं लगेगी। यह सुनकर जय सिंह ने कहा, तुझे क्या पता दाल रोटी के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है, किंतु चोरी से आसानी से धन मिल जाता है। यह धंधा अच्छा भी है, आसान भी है और लाभदायक भी है। तेजाबाई बार बार चोरी न करने के लिए टोकती रहती, परंतु जय सिंह की आदत नहीं छुटी। एक दिन पत्नी ने कह दिया उसे, ऐसी पाप की बिना हक की कमाई की रोटी नहीं चाहिए। जय सिंह चिल्लाकर बोला, यह कमाई मेरी मेहनत की है, हक की है। मैं जान पर खेलकर यह धन लाता हूँ। एक दिन जय सिंह चोरी करते हुए पकड़ा गया, कठोर सजा मिली। पत्नी ने जेल में जाकर जय सिंह को चोरी छोड़ने की विनंती की, प्रत्यक्ष फल बताया, फिर भी उसने हाँ नहीं भरी। जब जेल से छुटकर जय सिंह घर आया तब एक दिन पत्नी ने स्पष्ट कह दिया, आप चोरी छोड़ दो, नहीं तो मैं आपको छोड़कर बिहार चली जाऊंगी। अब भी जय सिंह ने चोरी करना नहीं छोड़ा। आखिर तेजाबाई अपने पुत्र को लेकर बिहार चली गई। 3 महीने बाद जय सिंह ससुराल गया और पुत्र राम की कसम खाकर चोरी नहीं करने का संकल्प कर लिया और पत्नी को मनाकर अपने घर ले आया। कुछ दिनों बाद जय सिंह के पुराने साथी ने उसको फिर से चोरी के लिए उकसाया कि रामपुर गांव में जीवन सिंह के यहाँ 5,000 रूपा व गहने मिल जाएगा, एक आखिरी चोरी और कर लो। पहले तो जय सिंह ने आनाकानी की, लेकिन पुरानी आदत और लोभ के कारण उसने प्रतिज्ञा को ताक में रखकर साथी की सलाह मान ली और चोरी करने चल पड़ा। दोनों रामपुर में जीवन सिंह के घर घुस गए। पैनी धार का छुरा जीवन की छाती पर धर कर कहा, अगर जरा भी आवाज निकाली तो जान से मार दूंगा। जितना भी गहना व रूपे है सब लाकर रख दो। जीवन सिंह कांपते हुए बोला, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे यहाँ रुपये व गहना कहाँ है। जय सिंह ने जीवन सिंह के हाथ पैर बांधे और धमकाया तो उसने कहा, मेरे यहाँ लड़की की शादी होने वाली है, ऐसे जोड़ जोड़ कर उसके लिए थोड़ा गहना बनवाया है। मेरे लिए वो कन्यादान का धन गौ मास के समान है। इस प्रकार जीवन सिंह ने बहुत अजीजी करी तो भी जय सिंह नहीं माना। आखिर कांपते हाथों से गहने की पेटी व जमा किए गए 5,000 रूपए निकाल कर दे दिए और जीवन सिंह सुबक सुबक कर रोने लगा। रात को करीब 2 बजे जय सिंह गहना लेकर नदी किनारे पहुंचा और एक खड्डे में धन गाड़ कर अपने खेत पहुंचा। करीब 4 बजे उसकी नींद लगी ही थी कि एक आदमी भागा भागा आया और बोला, जय काका जल्दी घर चलो, राम को सांप ने काट लिया है। जय सिंह तुरंत घर पहुंचा और देखा राम खाट पर बेहोश पड़ा है, शरीर नीला नीला होता जा रहा है। पत्नी उसके खाट के पास बैठी जोर जोर से रो रही है। आसपास खड़े लोग बोल रहे हैं, लगता है किसी संतप्त हृदय की बददुआ लग गई है जिससे आज ये बाग उजड़ गया है। यह सारा दृश्य देखते ही जय सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो भी रो पड़ा और 2 घंटे पहले बीती घटना चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगी। मन ही मन कहने लगा, हाय, मैंने चोरी नहीं करने की प्रतिज्ञा तोड़ी है, मैंने फिर से अपने हाथ से भारी अपराध किया है, मुझे कुबुद्धि सूझी उसी का फल मिला है। 2-3 हजार के पीछे मैंने अपना बेटा खो दिया है, फिर जयसिंह आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान आप मेरे राम को बचा लो, जैसे ही इसको होश आएगा मैं जीवन सिंह को तुरंत गहने व रूपे वापस लौटा दूंगा। आज के बाद चोरी का धन मैं मिट्टी तुल्य समझूंगा, बस इस बार मेरा अपराध माफ कर दो प्रभु। राम के शरीर में विष चढ़ता जा रहा था। डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक मंत्र, गारुड़ीक मंत्र के जानकार उसका उपचार कर रहे थे। आखिर 2.5 घंटे बाद राम को होश आया। उसके बच जाने की आशा बंधते ही जयसिंह तुरंत गहने व रूपे लेकर जीवन सिंह के घर पहुंचा। वह रो रहा था। उसको सांत्वना देकर गहने लौटाए और कहा, माफ करना, मैंने आपको बहुत सताया है, रू लिया है, यह लो 50 रुपए मेरी तरफ से कन्यादान में देना। जीवन सिंह हर्ष विभोर होकर कहने लगा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें पुत्र दे, तुम्हारे घर में सुख शांति बरते। यह सब सुनकर जयसिंह का मन संतुष्ट हो गया, मन में आनंद की हिलोरे उठने लगी। वो घर आया और जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प लिया। न्याय सुख मार्ग को सुनकर नजरअंदाज न करके उस पर चलना जरूरी है। धर्म प्रभावना एस्टरिस्क आज ज्योति जी जैन के 30, पारुल जी जैन के 7, अनुष्का हितेश जी जैन दोनों के 13 एवं अन्य अनेक तप जप चल रहे हैं। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हों।